نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله، ایک روزہ گزر گیا اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے ان چیزوں کو پریکٹس کیا ہوگا جو کل ہم نے ڈسکس کی تھی. تو کیا گریڈ دیں گے آپ اپنے روزے کو؟ یعنی میں آپ کو کچھ بتاؤں گی، آپ اس آئینے میں دیکھیے گا کہ آپ کا روزہ کس لیول کا ہے. علماء کہتے ہیں کہ روزے کے تین درجے ہیں، ایک عام روزہ، ایک خاص روزہ اور ایک خاص الخاص ویری اسپیشل روزہ. عام روزہ تو وہ ہے کہ خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکے رکھنا، جیسے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں نا، سارا دن بس بھوکے پیاسے رہنا، ان کو ہم ڈفرینٹ کاموں میں بزی رکھتے ہیں کہ ان کا دھیان کھانے کی پینے کی طرف نہ جائے. تو یہ عام روزہ ہے. ایک ہے خاص روزہ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ نظر بھی، زبان بھی، ہاتھ پیر کان، تمام اعضاء کو اپنے گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے کہ ان کا بھی روزہ رہے، ان سے کوئی گناہ کا کام نہ کریں. یہ خاص روزہ ہے. اور ایک خاص الخاص روزہ، ویری اسپیشل، وہ روزہ کیا ہے کہ دل کو سارے فضول باتوں سے، نیگیٹو تھنکنگ سے، برے خیالات سے، اللہ سے غافل کر دینے والی باتوں سے پرہیز کرا جائے اور اللہ کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جایا جائے، ایک طرف کر دیا جائے سب چیزوں کو. تو اب آپ بتائیے کہ آپ لوگوں کا روزہ کون سا تھا ان تینوں میں سے. ہر کوئی اپنے اپنے روزے کو جج کرے. دیکھیں، یہ عام روزہ بھی روزہ ہی ہے. آپ سوچتے ہوں گے کیا اتنی ضرورت ہے کہ بس سارا وقت مطلب ذکر ہی کرتے رہیں، یہ کیا. تو ویسے باقی لوگ بھی تو روزہ رکھتے ہیں. تو دیکھیں، باقی لوگوں کا روزہ ہو سکتا ہے عام روزہ ہو، آپ کا اسپیشل ویری اسپیشل بھی ہو سکتا ہے. تو خاص الخاص روزے میں تو دیکھیں، انسان کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رہے، جیسے کل بات ہو رہی تھی. اور جو خاص روزہ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ نگاہیں نیچی رہیں، زبان سے انسان کسی کو نہ تکلیف دے، بے فائدہ باتوں سے بچا رہے، باقی بھی باڈی پارٹ سے کوئی برائی کام برا کام نہ کرے. جیسے بعض دفعہ فضول بولے چلے جانا، چاہے اس میں کوئی برائی نہ بھی ہو لیکن یوں ہی بولے چلے جانا، اذیت نہ بھی ہو لیکن بیکار باتیں، وہ بھی پھر آپ کے روزے کو خاص روزہ نہیں رہنے دے گی. تو ان چیزوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے اعضاء کو حرام سے بچایا کہ نہیں، چاہے وہ دیکھنے سے متعلق چیزیں ہوں، بے حیائی کو دیکھنا یا اور چیزوں کو دیکھنا، چاہے وہ سننے سے متعلق ہوں، چاہے وہ بولنے سے متعلق ہوں کہ لمبے لمبے فون کیے چلے جانا، بس بولے چلے جانا، بولنے کا ہی شوق ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر دھیان اللہ کی طرف کہاں لگا رہے گا. تو اگر خاص الخاص والا روزہ رکھنا ہے نا، تو پھر تو آپ کا ہارٹ جو ہے اس کو پیور ہونا پڑے گا. تو کوئی تو زندگی کے روزے ایسے ہوں نا کہ خاص الخاص والے ہوں. دیکھیں الحمدللہ اب ہم قرآن سمجھنے والے بن گئے ہیں، تو اب ہمارے روزے میں اور اس وقت کے روزوں میں جب ہم قرآن نہیں جانتے تھے کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا. اس وقت تو عام روزہ ایک بچہ بھی رکھتا ہے، آپ بھی اتنے بڑے ہو کے ایک عام ہی روزہ رکھے، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. ایک نا سمجھ بچے میں اور آپ میں کیا کوئی فرق نہیں ہے. تو اس لیے روزے کو یا تو خاص روزے کے لیول پہ ہونا چاہیے، اور جو بہت ہی اچھا رکھنا چاہتے ہیں وہ خاص الخاص والا روزہ رکھے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی آج کوشش کرنی ہے کہ ہم نے خاص الخاص والا روزہ رکھنا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی یاد کے سوا باقی چیزوں سے ذرا تھوڑا دوسری چیزوں کو تھوڑا اگنور کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز جو آپ کو بہت ہیلپ کرے گی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں، اس کو یاد کرنے میں، میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے ہی بتا سکتی ہوں، کوئی کہیں لکھا ہوا تو نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ मुझे जो चीज़ हेल्प करती है कि अगर बंदा तस्बीह हाथ में पकड़ ले ना, तो उससे बार बार आपको याद आएगा कि मैंने ज़िक्र करना है। क्योंकि हम थोड़ी देर तो ज़िक्र करते हैं, फिर जाहिर सी बात है हमें इतनी आदत थोड़ी होती है, फिर उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन जब तस्बीह हाथ में होती है तो बार बार ध्यान फिर से अल्लाह की तरफ जाता है, फिर अल्लाह की तरफ जाता है। तो मुड़ मुड़ के ध्यान जाने के लिए तस्बीह हाथ में ज़रूर रखें। फिर ये कहें कि रोज़ाना कोशिश किया करें कि तरावी के लिए जाएं। इसके लिए कोई एक मस्जिद चूज़ कर लें, वहाँ पे आप तरावी अटेंड किया करें। जब मस्जिद में एंटर हो तो इतकाफ़ की नियत कर लें, वहाँ पे बैठ के भी अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, दुआ करके एंटर हो। फिर जाके सीधे बैठ ना जाएं, दो नफल तहियतुल मस्जिद पढ़ें फिर बैठें। तो मस्जिद जाने का एक फ़ायदा तो ये होगा कि आप घर में इतना लंबा क़याम नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि इतना हमें हिफ्ज़ ही नहीं होता। अगर बिलफर्ज़ हम कुरान पाक पकड़ के भी पढ़ लें तो फिर भी चंद नफल पढ़ के आपको पता है सुस्ती आने लगती है, क्योंकि अकेले जो कर रहे होते हैं, माहौल का बड़ा फ़र्क पड़ता है, माहौल आपको हेल्प करता है। तो जब सारे पढ़ रहे होते हैं तो इंसान उसी में साथ आसानी हो जाती है पढ़ने के लिए। और एक मज़ीद फ़ायदा ये होता है कि जितने लोग मिलते हैं उनको सलाम करें, नेकियां कमाते जाएं। हदीस में भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मुसलमान मुलाकात के बाद मुसाफ़ा करते हैं ना, हैंडशेक करते हैं और अल्लाह की तारीफ़ करते हैं और अल्लाह से मगफ़िरत मांगते हैं, तो उनकी मगफ़िरत कर दी जाती है। यानी क्या करते हैं, हैंडशेक करते हैं, तो मुसाफ़ा करते वक्त कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको भी माफ़ करे और हमें भी माफ़ करे। और जब एक दूसरे से उसका हाल पूछते हैं तो दूसरा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह की तारीफ़ भी हो गई, अल्लाह से मगफ़रत भी मांग ली, सलाम भी हो गया, तो उनकी मगफ़रत कर दी जाती है। तो इससे भी बख्शिश हमें मिलेगी। तो जहाँ पे भी मुसलमान मिले इस सुन्नत पे अमल करें, सुन्नत का अजर भी पाएंगे और हमने तो बख्शिश करवानी है ना अपनी इस महीने में, तो बख्शिश भी मिलेगी, सलाम का सवाब भी मिल जाएगा। आप इसकी दुनिया में ही आदत डालें, क्योंकि जन्नत में भी इंशाल्लाह फिर यही मिलेगा। सूरह आज़ाब में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि जिस दिन मुसलमान अल्लाह से मिलेंगे तो सलाम के साथ उनका इस्तकबाल होगा। सुभान अल्लाह, वहाँ पे भी सलाम है। जैसे हमने कल बात की थी अल्लाह का कुर्ब पाने का, हमने इंशाल्लाह ताला अहद किया है कि हम इंशाल्लाह इस महीने में अल्लाह ताला से करीब होने का के लिए जो भी काम हम कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला हम वो करेंगे। तो उसका एक ज़रिया सजदा भी है, बस जो तो वक़्तरिब, सजदा करो और करीब हो जाओ, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया ना। तो सजदा कुर्बे इलाही का ज़रिया है। तो ये जब आप तरावी के लिए भी जाएंगे तो उसमें कितने सारे सजदे हो जाते हैं। तो इसलिए एक तो ये है कि तरावी भी पढ़ें, वैसे भी फ़र्ज़ तो आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, मगर नवाफिल भी आजकल फ़र्ज़ के बराबर काउंट हो रहे हैं। तो जो लोग इस बात पे हसरत करते रहते हैं ना कि हमारी पिछली नमाज़ें छूट गई, अब उनका क्या होगा, हमें नहीं उस वक्त पता था, तो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल अदा कीजिए, इंशाल्लाह ये फ़र्ज़ के बराबर काउंट हो जाएंगे। अब नवाफिल कब कब आप पढ़ सकते हैं, घर में तो पढ़ ही सकते हैं, सवारी पे भी आप पढ़ सकते हैं। मसलन आप गाड़ी में जा रहे हैं, रास्ता थोड़ा लंबा है, मसलन मस्जिद ही जा रहे हैं, आपका घर से 10 मिनट का यूजुअली होता ही है, 10-15 मिनट का तो रास्ता होता है लोगों के मस्जिद तक, तो गाड़ी में बैठे बैठे भी आप नफल पढ़ सकते हैं। एक दफ़ा किबला रुख हो जाए उसके बाद गाड़ी जिधर भी मुड़ती जाएगी इट डज़न्ट मैटर, फिर आप बस नफल पढ़ते चले जाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी में बजाय इसके ऐसे ही फजूल बैठे रहें और बातें करते रहें तो उससे बेहतर नहीं है कि नफल ही हो जाएंगे, वहाँ तक पहुँचने तक 2 नफल तो हो जाएंगे आपके। इसी तरह दिन में आप कोई थोड़ा सा भी मौका लगे तो 2 नफल पढ़ लिए, किसी के घर गए अभी इफ्तार में वक्त है, जितनी देर आप इंतज़ार कर रहे हैं 2 नफल अदा कर लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह किया करते थे, एक हदीस में बुखारी की, किसी के घर खाने पे गए थे तो वहाँ पे पहले नमाज अदा की, नफल पढ़े। तो एक तो फ़र्ज़ों से तो इंसान अल्लाह के करीब होता ही है, मगर ये जो नफल है ना, इनके ज़रिए इंसान अल्लाह ताला से बहुत करीब हो जाता है। क्योंकि जैसे एक हदीस में भी आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदा मेरी पसंदीदा चीज़ों में से किसी भी चीज़ के ज़रिए मुझसे इस कदर करीब नहीं होता जितना उन चीज़ों की अदायगी से करीब होता है जो मैंने उन पे फ़र्ज़ की हैं। यानी सबसे ज़्यादा मेरा बंदा जिस चीज़ से मुझसे करीब होता है वो है फ़र्ज़। फ़र्ज़ तो ठीक है, हमने पढ़ना ही है, मगर एक चीज़ ऐसी है, अगर आप नहीं भी करेंगे अदा तो भी कोई आपको गुनाह नहीं होगा। वो क्या है? नवाफिल। कि अगर आपने कर लिए तो और भी ज़्यादा आपके दर्जे बुलंद होंगे। देखिए, एक आपको सबको वो हदीस याद है कि एक बद्दू आया, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे ऐसे काम बता दें कि बस जिसे मैं जन्नत में चला जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम बता दिए थे ना, तो उसने कहा बस मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नती है। ठीक है, ये सबको हदीस याद, और सब कहते हैं बेयर मिनिमम पे ज़िंदा रहो। तो ठीक है, फ़राइज़ पूरे करने से इंसान जन्नत में तो चला जाएगा, लेकिन जो नवाफिल है ना, नफल नमाज हो गई, नफल नफली जिक्र हो गया, नफली सदका हो गया, जो नवाफिल जितने भी हैं, नवाफिल से आपके दर्जे जन्नत में बुलंद होंगे, ऊंचे दर्जे मिलेंगे नफलों से। ठीक है, ये बेयर मिनिमम जो फ़राइज़ हैं ये तो जन्नत में एंट्री के लिए ज़रूरी है ना, और नफल किस लिए? जन्नत में ऊपर के दर्जे लेने के लिए। आपका क्या ख्याल है? जो सहाबा कराम हैं और जो हमारे जैसे लोग हैं, एक ही दर्जे पे आ जाएंगे? नहीं, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी वो आमाल कि जो फ़र्ज़ नहीं थे मगर फिर भी उन्होंने एक्स्ट्रा किए, वो हमसे कहीं ज़्यादा हैं। हम हर वक्त लीस्ट पे ज़िंदा रहना चाहते हैं, बस इतना कर लिया ना काफ़ी है। नहीं, और बढ़ाएं, इसलिए कि आगे इस हदीस में आता है, और मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है। देखिए, इंसान ना अल्लाह ताला से करीब होता रहता है, होता रहता है, जितने नफल अदा करता है ना अल्लाह से करीब होता जाता है, यहाँ तक कि वो मुझे महबूब हो जाता है। सो जब वो मेरा महबूब बन जाता है तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। और इसकी महबूबियत और नज़दीकी उसको इस कदर बुलंद कर देती कि वो मुझसे सवाल करता है तो इसका सवाल पूरा कर दूँ, और जो मांगे वो उसको दूँ, और अगर मुझसे पनाह तलब करे तो उसको तमाम आफात से पनाह दे दूँ। क्या मतलब है आँख कान हाथ पैर बनने का? यानी फिर वो जो देखता है वो वही देखता है जो जिसमें अल्लाह की रज़ा है, वो सुनता वही है जो जिसमें अल्लाह राज़ी हो, वो चलता वही है जहाँ पे अल्लाह को खुश कर सकता हो। इसका हाथ सिर्फ उस चीज़ की तरफ बढ़ता है जिसे अल्लाह का कुर्ब नसीब हो। वो एक गालिब का कोई शेर है ना, उसका एक मिसरा है कि गालिब नदी में दोस्त से आती है बूए दोस्त, ऐसा ही कुछ है ना, कि जो दोस्त का दोस्त है ना उससे पता लग जाता है कि वो किसका दोस्त है। यानी जो अल्लाह का दोस्त होगा ना उसको देख के ही पता चल जाता है कि ये इसका ताल्लुक किस जात से है, उसको देख के ही रब याद आ जाता है। तो हमें भी ऐसा होना चाहिए कि हमें देख के लोगों को रब याद आ जाए, चाहे हमारी इबादत है, चाहे हमारा हाल हुलिया है, चाहे हमारा बोल चाल का तरीका है, चाहे हमारा उठना बैठना है, पता चल जाए कि इसका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ चुका है। और अगर हम वाकई अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले हैं तो हमारे हाल हुलिया ऐसे होने चाहिए कि जब हम घर से निकलें तो काफिर भी देखे तो उसको पता चल जाए कि ये एक अल्लाह पे ईमान लाने वाली औरत है। ये ना उसको कन्फ्यूज़न हो कि पता नहीं हिंदू है कि मुसलमान है, कुछ समझ नहीं आ रही, सिख है या मुस्लिम है, कुछ नहीं समझ आ रहा। एक जैसे ही हाल हो लिया, ये ना हो। आपका दूर से कोई देख के भी पहचान ले हाल हुलिये से, बोल के ना बताना पड़े, पता चल जाए कि ये दोस्त किसकी है, इसका ताल्लुक किसके साथ है। तो कोशिश करें, फ़राइज़ को तो पूरा करना ही है इंशाल्लाह, नवाफिल भी अदा करने हैं। लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको 1.5 पारा मुकम्मल करने के लिए दिया था, अब इंशाल्लाह ताला आप अगला 1.5 मुकम्मल कर लें, 1.5। अब आप इंशाल्लाह ताला सूरह बकरा की आखिरी आयात पे पहुंच जाएंगे। सूरह बकरा की आखिरी आयात के बारे में एक हदीस आती है कि एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि ऊपर से एक ज़ोर की आवाज़ सुनाई दी। इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया तो जिब्राईल बोले, ये आसमान का एक दरवाज़ा है जो आज खुला है और आज से पहले कभी नहीं खुला। फिर इसमें से एक फ़रिश्ता उतरा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये एक फ़रिश्ता है जो ज़मीन की तरफ उतरा है, ये आज से पहले कभी नहीं उतरा। फिर इस फ़रिश्ते ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा कि आपको ऐसे दो नूरों की खुशखबरी हो जो आपको दिए गए और आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए, एक सूरह फातिहा और दूसरा सूरह बकरा की का आखिरी हिस्सा, आखिरी आयात। तो इंशाल्लाह ताला जो कि आज आप अपने यानी जब इख्तिताम करेंगे सूरह बकरा का, तो आप उनसे गो थ्रू करेंगे, तो ये सोच के उन आयात को पढ़िएगा कि आज से पहले कभी नहीं किसी को मिली थी ये आयतें, और इन आयात के लिए इतना एहतमाम किया गया। ये मुस्लिम की रिवायत है। कल भी मैंने आपको एक रिवायत सुनाई थी ना, वही जो सूरह बकरा की फजीलत के बारे में थी, बहुत खूबसूरत रिवायत हज़रत उसैद बिन हज़ीर की। आज उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, जिन्होंने देखा था ऊपर छतरी सी है और उसके अंदर चिराग जल रहे हैं। थोड़ा सा इनके इस्लाम लाने के बारे में आपको बताती हूँ। हज़रत मुसब बिन उमैर जो थे, जब तबलीग के लिए मदीना पहुँचे थे, तो आपने ये कबीला खजरज था ना, वहाँ पे रहा करता, उसके एक सरदार के यहाँ क़याम किया। उसने सरदार का नाम था असद बिन ज़ुरारा। उसने अपना एक कमरा इनके क़याम के लिए मखसूस कर दिया था कि जो भी आपने तबलीग करनी है यहीं से किया करें। और मुसब बिन उमैर जो थे इतने स्वीट बोलते थे और इतने खुश अखलाक थे कि इनके लोग बहुत जल्दी इनके इर्द गिर्द जमा हो गए, इनके गर्विदा हो गए, और इतना खूबसूरत कुरान पढ़ते थे, तिलावत इतनी खूबसूरत थी कि पत्थर जैसे दिल भी मोम हो जाते थे, लोगों के आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। हर इनकी मजलिस में कोई ना कोई इस्लाम ले आता था। तो एक दिन असद बिन ज़ुरारा अपने इन मेहमान को मुसब बिन उमैर के साथ घर से निकले ताकि कबीला बनू अब्दुल असल के कुछ लोगों से मुलाकात करें और उनके सामने इस्लाम की दावत दें। दोनों एक बाग में दाखिल हुए और एक मीठे पानी के चश्मे के पास बैठ गए। देखते हैं कि वो लोग इनके इर्द गिर्द जमा हो गए जो अभी नए नए मुसलमान हुए थे, और चंद गैर मुस्लिम भी आपकी बातें सुनने के लिए करीब आके बैठ गए। तो मुसब बिन उमैर जो थे, उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज़ में उनके सामने इस्लाम की दावत रखी। सब खामोश हो गए, तवज्जो से सुनने लगे, बहुत मुतासर हुए। एक दिन ये मदीना में एक आदमी था जिनका जिक्र ये आज, जिनकी मैंने बात आपको कल बताई थी ना, उसैद बिन हुज़ैर। तो वो और साद बिन मुआस को इत्तला दी। साद बिन मुआस के बारे में भी आपने पढ़ा है, अभी हमने सूरह अज़ाब में देखा था। ये दोनों कबीले औस के सरदार थे। साद बिन मुआस वही हैं, याद आया आपको, जिनका जनाजा उठाया था तो बहुत हल्का था और जिनकी शहादत के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श हिल गया था। तो ये अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उनको पता चला कि एक आदमी मक्का से आया है और करीब ही रह रहा है और लोगों को दीन की दावत दे रहा है। तो ये सुन के साद बिन मुआज़ ने उसैद बिन हज़ीर से कहा, तेरा कुछ ना रहे, फौरन जा इस मक्की नौजवान की खबर ले जिसने हमारे घरों का रुख कर रखा है। वो चाहता है कि हमारे कमज़ोर दिल लोगों को वरगला दे और हमारे खुदाओं की तौहीन करे। उसको रोको आज के बाद कि वो हमारे इलाके में कदम ना रखे। और फिर कहने लगे, अगर ये मेरी खाला के बेटे असद बिन जुरारा के हाँ मेहमान ना होता, मैं उसको खुद खबर ले लेता, इसे फौरन यहाँ से निकालता। तो साद बिन वाज की बातें सुन के असद बिन हुजैर ने अपना नेजा पकड़ा, सीधे बाग में चले गए। असद बिन जुरारा ने जब दूर से इनको बाग की तरफ आते हुए देखा तो मुसा बिन उमैर के कान में कहा, वो देखो कबीले का सरदार उसैद बिन हुजैर आ रहा है। बहुत से कमालात की बिना पर इसे कबीले में बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, अगर ये मुसलमान हो गया तो इसकी वजह से बड़े लोग मुसलमान हो जाएंगे। आप इनके सामने बड़े ही अच्छे तरीके से इस्लाम का पैगाम रखें। तो वो उसैद बिन हुजैर आए हैं बड़े रोब के साथ, आके बड़े मजमे में खड़े हो गए और मुसब बिन उमैर को कहने लगे, मुझे ये बताओ तुम्हें हमारे घरों की तरफ रुख करने की जरूरत कैसे हुई है? हमारे कमज़ोर दिल लोगों को फिसलाने और वरगलाने के लिए तुम्हें किसने इजाज़त दी? कान खोल के मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें अपनी जान की ज़रूरत है तो इसी वक्त हमारी बस्ती से निकल जाओ। मुसब बिन उमैर सुबहान अल्लाह नूरे ईमान इतना था, उन्होंने सैद बिन हुज़ैर की तरफ़ देखा, बड़े नरम लहजे में मीठे अंदाज में फरमाए, मेरे भाई क्या तुम्हें खैर और भलाई चाहिए? तो सैद कहते हैं, खैर और भलाई क्या होती है? आपने फरमाया, आप हमारे पास चंद लम्हे बैठे मेरी बातें सुने, अगर आपको ये बातें पसंद आए तो कबूल कर लेना, अगर ना पसंद आए तो हमारा आपसे वादा है कि हम यहाँ से चले जाएंगे और दोबारा कभी इस तरफ का रुख नहीं करेंगे। ये सुन के उसैद ने कहा कि बात तो आपकी दिल लगी है, अपना नेज़ा ज़मीन पर गाड़ा, आराम से बैठ गए। तो मुसब बिन उमैर जो थे बड़े खूबसूरत अंदाज में इनके सामने इस्लाम की खूबियाँ, इसकी फजीलतें बयान की और कुरान की आयात तिलावत की, और जो जो वो तिलावत करते जा रहे थे इनके चेहरे से एकदम यानी चेहरा बदलता जा रहा था। और जब इन्होंने ख़त्म की तो कहने लगे, आपकी बातें क्या खूब हैं, कितनी दिलनशीन है, जिस कलाम की आप तिलावत करें वो तो बड़ा अजीम कलाम है। देख लें अब ये कुरान हम भी तो तिलावत कर रहे हैं ना, हमें नहीं कोई असर होता, यही कलाम है जिसने पत्थर दिलों को मोम कर दिया। किस तरह आए थे और देखें अब क्या हालत हो गई, झुकी हुई नज़रों से बाअदब अंदाज में पूछा, इस्लाम में दाखिल होने का क्या तरीका है? मुसा बिन उमैर ने इरशाद फरमाया, पहले आप नहा लें, साफ सुथरे कपड़े पहने, फिर कलमा पढ़ लें और इसके बाद 2 रकात नमाज अदा करें। ये सुन के वो मजलिस से उठे, करीबी कुएं पे गए और गुसल किया, कलमा पढ़ा, 2 रकात नमाज पढ़ी और ये इस्लाम में दाखिल हो गए। और ये इनकी शान ऐसी थी कि इनकी वजह से बहुत सारे लोग इस्लाम में आए, यानी साद बिन मुआज के इस्लाम कबूल करने की वजह भी ये थे। सुभान अल्लाह, कभी कभी इंसान खुद हो सकता है इतना आगे ना जा सके, मगर जिन लोगों को जिन जो लोग उसकी वजह से इस्लाम लेकर आए वो कितने आगे चले जाएं। आप देखें साद बिन मुआज का दर्जा, वो इनकी वजह से इस्लाम लाए। अब देखें शायद दुनिया में तो किसी को ना पता हो, लोगों को साद बिन मुआज का नाम पता हो और सैद का नाम किसी कोई ना जानता हो, लेकिन कयामत के दिन जो नेकियां साद बिन मुआज की होंगी उनमें उसैद भी हिस्सेदार होंगे, उन नेकियों का अजर उसैद को भी मिलेगा और साद की नेकियों में अजर में कोई कमी नहीं आएगी। सुभान अल्लाह, तो कभी कभी इंसान ऐसे दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है उसको पता भी नहीं होता। अब फिर जब मुसा बिन उमैर से उसैद बिन हुजैर ने कुरान पाक की तिलावत सुनी तो इनके दिल में इतना कुरान से इतनी मोहब्बत पैदा हो गई, ये हर वक्त कुरान की तरफ मुतवज्जे रहते थे जैसे कोई प्यासा नहीं होता जो गर्म तरीन दिन में मीठे और ठंडे चश्मे की तरफ लपकता है ना, इस तरह ये कुरान के ही होके रह गए थे। ऐसे ही थोड़ी फरिश्ते उतर आए, इतनी करीब आ गए इनकी तिलावत सुन के, इतना ये कुरान से मोहब्बत करते थे। और देखिए सुबहान अल्लाह, यानी बचपन से थोड़ी मुसलमान थे लेकिन अब जाके सीखा और कितने आगे निकल गए इसमें, इतना खूबसूरत पढ़ते थे और इनकी आवाज़ भी इतनी सुरीली थी, जब रात का सन्नाटा छा जाता लोग नींद की आगोश में चले जाते तो इतनी खूबसूरत तरीके से कुरान पढ़ा करते थे और सहाबा कराम आपकी तिलावत सुनने के मुंतजर रहते थे। खुश नसीब है वो लोग जिनको इनकी ज़ुबान से कुरान की तिलावत सुनी जिन्होंने, और बिल्कुल हूबहू उसी तरह कुरान पाक पढ़ते थे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। तो जबी तो ये वाक्या पेश आया जो मैंने आपके सामने कल बयान किया था, तो इनके कुरान के साथ मोहब्बत की वजह से, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी इनको बेपनाह मोहब्बत थी। ये अपने बारे में खुद बयान करते हैं कि जब मैं कुरान की तिलावत करता हूँ तो मेरा दिल ईमान और यकीन की दौलत से माला माल हो जाता है। फरमाते हैं कि मेरी दिली तमन्ना थी कि मुझे मौका मिले तो आपके जिस्म मुबारक को चूम लूँ जिनके ज़रिए से यह कुरान मुझे मिला है। तो कहते हैं कि मैं जब कुरान पढ़ता हूँ दिल पे ऐसा ऐसी तजल्लियात का वरूद होने लगता है, मेरे दिल की ऐसी कैफियत हो जाती है, जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखता हूँ कुरान पढ़ता हूँ। तो कहते हैं मेरी बड़ी ही ख्वाहिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूम लूँ। एक दिन कहते हैं मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। हुआ इस तरह कि एक रोज़ मैं मजलिस में बैठा हुआ था, लोगों को नसीहत आमोज़ कहानियाँ सुना रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ़ देखा और मेरी बगल में चुटकी ली, ऐसे जैसे चुटकी ले लेते हैं किसी की। तो मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह इससे मुझे तकलीफ़ हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, उसैद अगर तुम्हें तकलीफ़ हुई है तो मुझसे बदला ले लो। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आपके बदन पे तो कमीज़ है, मेरे बदन पे कमीज़ नहीं। आपने मेरे से यानी चुटकी उस वक्त काटी है जिस वक्त मेरे बदन पे कमीज़ नहीं है, ये सुन के आपने बदला लेने के लिए कमीज़ उतार दी। तो मैं आपसे लिपट गया और जिस्म मुबारक को चूमने लगा, और साथ ही मैंने अपनी इस तमन्ना का इजहार करते हुए अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हूँ, जब से मैं आप पर ईमान लाया हूँ इसी दिन से मेरी ये दिल की तमन्ना थी कि आपके जिस्म को चूम लूँ। अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरी ये तमन्ना पूरी हुई। सुभान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे, और ग़ज़वा उहद में इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इस तरह से दिफा किया था, जिधर से आपकी तरफ कोई तीर आता फौरन आगे बढ़ जाते, तीर सीधा इनके जिस्म में जाके घुस जाता। तो 7 तीर इनके जिस्म को छलनी कर गए थे, लेकिन ये आगे आ जाते थे, जिधर से तीर आ रहा होता था उधर आगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढाल बन गए थे कि कोई तीर आप तक ना पहुंच जाए, मेरे जिस्म पे लगे तो भले लगे। ये सुभान अल्लाह इनका मकाम था, ये बड़े बड़े दर्जों वाले सहाबा कराम हैं, इनकी ज़िंदगियों से हमें सीखना चाहिए। अल्लाह ताला ऐसी कुरान की मोहब्बत हमें दे कि हमारा ज़्यादा वक्त कुरान के साथ गुजरे, इसको पढ़ने में, इसको सीखने में, इसको समझने में। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया कि अल्लाह से डरते वही हैं जो इल्म वाले हैं। तो इसको सिर्फ ऐसे ही ट्रेन नहीं चला के पढ़ना कि बस एक आउज़ु बिल्लाह से शुरू हुआ और उसके बाद एक ट्रेन ही चल गई और फिर उसके बाद बस पता नहीं कहाँ पे ख़त्म हुआ। इसको सीखना भी है, समझना भी है ना, समझेंगे तो फिर अल्लाह से डरेंगे, फिर ही मोहब्बत पैदा होगी इस कलाम से भी। एक हदीस में भी आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हज़रत अबू ज़र से, ए अबू ज़र अगर तुम्हें कहीं जाके कुरान की अगर तुम कहीं जाकर कुरान की एक आयत सीख लो तो ये तुम्हारे लिए 100 रकत पढ़ने से बेहतर है। देखिए 100 रकत नमाज आप पढ़ते हैं ना, उससे बेहतर है आप एक कुरान की आयत को सीख लें सही तरीके से, समझ लें सही तरीके से। और अगर तुम्हें कहीं जाकर एक मज़मून एक टॉपिक दीन के इल्म का सीख लो, ख्वाह इस पर अमल हो या ना हो, ये तुम्हारे लिए 1000 रकत नफल पढ़ने से बेहतर है। ये इब्ने माजा की रिवायत है। तो आप देखिए कि कितना बड़ा मर्तबा है इस कुरान को सीखने का, समझने का। तो अपने सबक याद करने ना भूलिएगा, अपने सबक रिवाइज करने ना भूलिएगा। अच्छा, फिर हमने जैसे बात की कि हमने इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला का कुर्ब लेना है, उसकी मोहब्बत को पाने की कोशिश करनी है, तो इसका एक तरीका जैसे कल हमने बात की थी कि अल्लाह ताला किन लोगों से मोहब्बत करता है, इसी तरह एक और बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी आप कह दीजिए कुल इन कुन तुम तो हिब्बून अल्लाह फ़त्तबियाउनी युहबिबकुमुल्लाह, ऐ नबी आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो ना तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। इसका मतलब है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है। उनके हम दिन रात के अमल भी देखेंगे इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन रात के मामूलात क्या थे, क्योंकि वो चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके हम अल्लाह ताला की मोहब्बत पा सकते हैं कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करने लगे। तो पहली चीज़ जो सुबह सो के उठने की है, उसकी जो सुन्नत है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए उठा करते थे, अब आप भी सहरी के लिए उठते हैं, आपको याद रहा है ना आज 2 नफल पढ़े आपने उठ के, उसके बाद दुआएं की होंगी। तो जब आप उठने लगे बिस्तर से, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल मलिक अल कुद्दूस, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब 10 10 टाइम्स। फिर अल्लाहुम्मा आऊज़ु बिका मिन दीक़ दुनिया व दीक़ यौम अल क़ियामा, ये भी 10 टाइम्स। ऐ अल्लाह मुझे दुनिया और आखरत की तंगियों से अपनी पनाह में ले ले। फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वहदीनी वरज़ुक़नी वआफ़ीनी, ऐ अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मेरी मग़फ़रत कर दे, वहदीनी, अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फ़रमा, वआफ़ीनी, अल्लाह आफ़ियत अता फ़रमा। ठीक है, उठते ही ना बिस्तर से वो ये पढ़ना है आपने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बादा मा मातना, ये दुआ तो पढ़नी है, ये भी पढ़ना है। देखिए ये तो सारी आसान आसान है, अगर आप चाहें तो इंशाल्लाह किसी कार्ड पे लिख के अपने बेड साइड पे रख लें कि अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, सुबहान अल मलिक अल कुद्दूस, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर उसके बाद जो मैंने आपको दुआ बताई है। और जब बिस्तर से उठते तो आले इमरान की आखिरी जो 11 आयाज़ हैं, 190 से 200 तक पढ़ते थे, इन्ना फ़ी खल्क़िस समावाती वल अर्ज़ से। तो ये कोशिश करें कि सो के उठने की ये दो सुन्नतें तो इंशाल्लाह अपनाएं, उठते ही अल्लाह का नाम। ठीक है, फिर एक और चीज़ जो आपको अल्लाह ताला के गुस्से से बचाती है वो है सदका। तिरमिज़ी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सदका परवरदिगार आलम के गुस्से को बुझा देता है और बुरी मौत को दूर करता है। दो चीज़ें इससे होती हैं, एक तो अल्लाह ताला का गुस्सा, उसकी नाराज़गी, यानी जब इंसान दोजख का मुस्तहिक हो जाता है ना कि इसने अब दोजख में जाना है, इसके ऐसे काम हो गए, अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज़ हो जाते हैं, अल्लाह ताला को उस पर गुस्सा होता है। तो उस वक़्त जब इंसान सदका करता है उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला उससे नाराज़ था। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला के गुस्से को, उसकी नाराज़गी को, दोजख की आग को बुझा देता है। तो सदका कीजिए, चाहे तो माल में से करें और यहाँ या किसी चीज़ का ही सदका कर दें, कुछ अपने हाथ से स्पेंड कर दें। सदका कपड़ों का भी हो सकता है, आप कोई कपड़ा भी किसी को दे सकते हैं, जैसे कि हदीस में भी आता है कि जो शख्स किसी मुसलमान को नंगेपन की हालत में कपड़ा पहनाएगा, यानी कोई मुफलिस है, इसके पास कपड़े नहीं है, आपने उसको कपड़ा पहनाया, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में सब्ज़ लिबास पहनाएगा। और इसी तरह जो शख्स किसी मुसलमान को भूख की हालत में कुछ खिलाएगा तो अल्लाह ताला उसको जन्नत के फल खिलाएगा, और जो शख्स किसी मुसलमान को प्यास की हालत में पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला उसको ऐसी शराब जन्नत में पिलाएगा जिस पर मुहर लगी हुई होगी। तो इसलिए मसलन है कि आपने कहीं कुआं खुदवा दिया, उसमें हिस्सा डाल दिया, पूरा नहीं सही, उसमें हिस्सा डाल दिया आपने, कि जहाँ पे जिन इलाकों में पानी नहीं है, कि खलके खुदा को की प्यास बुझे जब तक लोग उससे पानी पीते रहेंगे, आपका हिस्सा उसमें पड़ा हुआ है, तो ये बेहतरीन सदका है। और आप अपने जो कोई फौतशुदगान है, ख़ास तौर पे किसी के पेरेंट्स दुनिया से जा चुके हैं, तो वो उनकी तरफ से ये बेहतरीन सदका करें कि लोगों को पानी पिलाने का इंतज़ाम करिए, जो पानी पिलाएगा देखें कितना बड़ा अजर है। और उस दिन की भूख और उस दिन की प्यास का तो जिक्र भी आता है ना, हशर के दिन की कितनी सख्त भूख और प्यास होगी, उस दिन से ज़्यादा इंसान को कभी कभी जिंदगी भर इतनी भूख प्यास नहीं लगी होगी और इतनी थकावट नहीं होगी जितनी कयामत के दिन उसको महसूस होगी। तो पिलाएं भी, खिलाएं भी, पहनाएं भी, ये भी सदका करने के तरीके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज आंधी की तरह हो जाया करते थे रमजान में, यानी हर नेकी में हिस्सा डालने वाले, हर नेकी में इधर भी हिस्सा डाल दें, उधर भी डाल दें, मस्जिद में भी डाल लें, कहीं सदका करके पानी भी पिला दें, किसी को खिला दें, किसी का रोज़ा इफ्तार करवा दें, किसी को राशन डलवा दें, किसी को पहनाने का इंतज़ाम कर दें। तो हर जगह पे थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डालते जाएं, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, एक शिकायत जो बहुत से लोगों को है और बहुत से लोगों का सवाल भी होता है, मैंने सोचा ज़रा आप लोगों को उसके बारे में बता दूं, कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें बहुत वसवास आते हैं, और इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, ये वाकई बहुत कॉमन चीज़ है। ज़ाहिर है जब आप अल्लाह के ज़िक्र के लिए खड़े होते हैं तो वसवसे आना एक नेचुरल बात है। इसका इलाज तो ख़ुद कुरान बताता है ना, कि आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। जैसे एक सहाबी उस्मान बिन अबी अल आस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शैतान मेरे और मेरी नमाज के दरमियान आ जाता है, और जब मैं किरात करता हूँ तो मुझको शक में डाल देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक शैतान है जिसको खंजब कहा जाता है। बस जब तुम अपने दिल में वसवसा की कोई चीज़ महसूस करो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। पढ़ के बाएं जानेब दिल पे 3 बार थुतकार दिया करो, जैसे आप थु 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 करते हैं इस तरह से। तो कहते हैं कि मैंने ऐसा ही किया तो अल्लाह ताला ने वसवसे दूर कर दिए। तो नमाज में या नमाज के बाद भी आप ये अमल कर सकते हैं। नमाज में अगर वसवसा आए वहीं रुक के ये अमल कर लें, ये भी बेहतरीन इलाज है। और अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहें कि या अल्लाह मैं बड़ी कमज़ोर हूँ, जब तक अल्लाह आपकी मदद ना हो मैं तो नहीं शैतान पे काबू पा सकती। या अल्लाह ताला जितना वसवसा शैतान मेरे दिल में डाले इससे करोड़ों करोड़ों दर्जे ज़्यादा अपनी और अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दें, मुझे शुक्रगुजार बंदी, परहेज़गार बंदी बना दें। तो इंशाअल्लाह ताला आप जब दुआ करते रहेंगे इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये वसवसे आने बंद हो जाएंगे। इसके लिए एक और नुस्खा जो है वो ये है कि सूरह इखलास बार बार पढ़ें, ठीक है, कुल हुवल्लाहु अहद, ये है ना, ये बार बार पढ़ें, और हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल ज़ाहिर हुवल बातिनु व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, ये भी पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करेगा कि वसवसों से इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ तो आपको निजात मिलेगी, क्योंकि वसवसे आके हमारी नमाज ना बिल्कुल ख़राब हो जाती है, उसकी वो बात ही नहीं रहती। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, जिस वक़्त कि आप वज़ू करते हैं, वज़ू ही अगर आपने सही से नहीं किया ना तो ऑल द वे आपकी नमाज ख़राब होती ही चली जाएगी। वज़ू को एक्चुअली हम समझते हैं कि नमाज की रिक्वायरमेंट है, वो तो बिल्कुल ठीक बात है, रिक्वायरमेंट है, लेकिन वज़ू इट्स सेल्फ भी एक इबादत है, आपको पता है, इट्स सेल्फ एक इबादत है। किस तरह से, वज़ू को सिर्फ इसलिए ना करें कि मैंने नमाज पढ़नी है, वैसे भी बावजू रहें उसके ऊपर आपको अजर मिलता जाएगा जब आप बावजू रहेंगे। तो कैसे ये इबादत है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमिन बंदा वज़ू करता है तो जब कुल्ली करता है उसके मुंह के गुनाह झड़ जाते हैं, फिर जब नाक को झाड़ता है उसके नाक के गुनाह निकल जाते हैं, जिस वक्त चेहरा धोता है इसके चेहरे के गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि पलकों के नीचे आई लैशेस के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। चेहरा धोते वक्त भी इंसान का सारा, समझ लें कि जब आप पानी गिर रहा है ना साथ साथ गुनाह भी गिरते जा रहे हैं, जब हाथ धोता है दोनों हाथों से गुनाह निकल जाते हैं, हत्ता के नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं, जब मसा करता है तो सर से गुनाह निकल जाते हैं। सोचे ना कितने गुनाह, हमारा दिमाग कितनी चीज़ें सोचता है, हमारी आंखों से कितने गुनाह हुए होते हैं, हमारे चेहरे के कितने गुनाह हैं, यहाँ तक कि फिर जब कानों का मसा करता है तो कानों से भी गुनाह निकल जाते हैं, पाँव धोता है तो पाँव से गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि दोनों पाँव के नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। तो फिर जब इंसान ऐसा प्यारा वजू करके नमाज पढ़ता है ना, तो फिर वो गुनाहों से पाक होता है। ठीक है, तो जब आप वजू करने के लिए जाएं, ये सोच के जाएं कि मैं गुनाह धोने के लिए जा रही हूँ, ये मेरे गुनाह धुल रहे हैं, ये गिर रहे हैं सारे मेरे गुनाह, तो फिर आपका इंशाल्लाह ताला वजू भी वाकई फायदेमंद वाला होगा। वरना वजू तो हम ऐसे करते हैं बेध्यानी में, इधर बातें हो रही हैं, उधर हंस रहे हैं, उधर उसको आवाज़ें दे रहे हैं, साथ वजू भी हो रहा है हमारा, साथ शीशा देख रहे हैं, पता है नहीं कि किधर वजू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस एक रूटीन और वो चलते चले जा रहे हैं। नहीं, वो नहीं है वजू। अब अगर इस तरह का वजू होगा, क्या आपकी नमाज होगी? फिर वसवसे ही आएंगे नमाज में। तो इसको एक इबादत समझ के करें कि इसके भी मुझे यानी नेकियां मिलनी है, ये एक अलग चीज़ है, एक अलग उसको इबादत समझे। जैसे नमाज एक इबादत है, रोज़ा एक इबादत है, वजू भी एक इबादत है। ठीक है, इंशाल्लाह इस दफ़ा इस तरह से वजू करके देखिएगा, तो अल्लाह ताला करे कि हमारे ये जो वसवसों के मसले हैं अल्लाह ताला हल फरमाए। सबके दिलों में वसवसे आ जाते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है कि आपका कोई ज़्यादा आते हैं, हर एक के दिल में आ जाते हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला कोशिश हमने करते रहना है, वसवसा आए तो उसको बार बार झटके, उसी के अंदर नहीं खो जाना। ठीक है, आज का जिक्र वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ना, जन्नत की कुंजी है, जन्नत की चाबी है। और ये इतना वजनी है, इतना वजनी है कि एक पलड़े में जमीन आसमान, पूरी जमीन आसमान जितने हैं, सारे प्लैनेट्स रख दो जमीन में, जितने पहाड़ हैं, दरख्त हैं, दरिया हैं, समंदर हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, घर हैं, जो भी चीज़ें हैं जमीन के ऊपर, सारी एक पलड़े में रख ले। और एक दूसरा जो पलड़ा है, तराजू समझ लें ना, इमेजिन करें तराजू, दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह रख दे, तो कलमा जो है वो ज़्यादा वज़नी होगा इन सारी चीज़ों से। सोचिए, इतना भारी है, कुछ छोटी बात नहीं है। आप कह रहे होंगे आज भी हमें कलमा ही पढ़ने को कह दिया, तो बात यह है कि इसको समझें कि ये कितने बड़ी चीज़ है जो आप पढ़ रहे हैं, कितनी, ये वो चीज़ है जो काफिर को मुसलमान कर देती है, कितनी बड़ी चीज़ है ना। फिर एक दफ़ा मुंह से निकालने से इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है, दुनिया बदल जाती है, तो ये छोटी बात नहीं है। ठीक है, और आज की दुआ है सूरह कहफ की आयत नंबर 10 में, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। बहुत प्यारी दुआ है, ऐ हमारे रब हमें अपनी ख़ास रहमत से नवाज दे, वह हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा, अल्लाह हमारा मामला दुरुस्त कर दे, ठीक कर दे हमारा मामला। बहुत प्यारी दुआ है, तो ये सब आप सूरह कहफ से निकाल सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह करे कि हम अपने रोज़ों को ख़ास उल ख़ास रोज़े बना सकें। अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमाते और इस महीने को अपने से क़ुर्ब का ज़रिया हमारे लिए बना दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।